शांति। देवताओं की महिमा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न की जाती है। संपन्नता अर्थात भरपूरता, ये सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने ये तो हम ब्राह्मण अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद बाबा ने आकर के हम बच्चों के आगे साकार ब्रह्मा बाबा का एक ऐसा एग्जाम्पल पास कर हमारे सामने रखा, जिसको देख के कैसा बनना है इसकी प्रेरणा हमें मिलती। क्योंकि आज भी हम बाबा की मुरली सुन रहे थे, बाबा ने जिसमें बताया कि भगवान को कभी भी किसी का अहंकार अच्छा नहीं लगता, मैंने किया अगर ये संकल्प आया तो मरा। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराया है कि जब मैं शब्द आवे तो उस समय ये पक्का करो कि मैं कौन हूं आत्मा, और मेरा आवे तो मेरा बाबा। सदैव करण करावन हार स्वामी याद रहे, तब कभी भी कर्तापन का भान नहीं आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में संपन्नता और संपूर्णता लाने के लिए हमें क्या क्या करना है। साकार बाबा के जीवन के तरफ अगर आप देखेंगे तो बाबा ने एक धक से अपना सर्वस्व ईश्वर अर्पण कर दिया। संपन्न बनने के लिए समर्पण होने की आवश्यकता, जब तक हम समर्पण नहीं होते हैं तब तक संपन्न नहीं बन सकते हैं, और संपन्नता नहीं आती है तो हम संपूर्ण स्थिति को भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो बाबा की जीवन कहानी की तरफ अगर देखते हैं तो बाबा ने एक ही संकल्प उठाया कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, और बाबा ने अपना समय, अपने स्वास्थ्य, अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ ईश्वरीय कार्य में अर्पण कर दिया। और अगर पूरी जीवन कहानी देखेंगे बाबा की तो बाबा को कभी ये नहीं आया कि मैंने कुछ किया है, बाबा को सदैव यही याद रहा कि मैंने क्या पाया है। बाबा हमेशा प्राप्ति स्वरूप स्थिति में रहे, इसीलिए सदा खुशी में नाचते रहे और बच्चों को नचाते रहे। हम देखते थे बाबा में कभी भी मैंपन नहीं था, बाबा को सदैव ये याद था कि करण करावन हार स्वामी जो है वो करा रहा है और मैं निमित्त बन के ये कार्य कर रहा हूं। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि ये यज्ञ मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं। बाबा ने सदैव ये याद दिलाया बच्चों को कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है और ये सब शिव बाबा के बच्चे हैं, रुद्र के बच्चे हैं। जिस समय बाबा के साथ साकार मम्मा बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन खाते थे उस समय भी बाबा बच्चों को याद दिलाते थे कि बच्चे शिव भोलेनाथ का, शिव भोलेनाथ के भंडारे से शिव बाबा को याद करके ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। खाते थे ब्रह्मा भोजन, परंतु किसके भंडारे से खा रहे इसकी याद बाबा दिलाते। कभी ये नहीं कहा कि ब्रह्मा के भंडारे से खा रहे हैं, शिव भोलेनाथ के भंडारे से खा रहे। तो बाबा ने सदैव बच्चों का बुद्धि का योग एक ही शिव बाबा से लगाने का हमेशा ही पुरुषार्थ कराया। निमित्त भाव और निर्माण भाव, इसकी कला अगर जीवन में है तो संपन्नता आती। वो प्रैक्टिकल में देखने में आया कि बाबा अपने को निमित्त समझता था, मालिक नहीं, परंतु मैं निमित्त हूं। निमित्त होने के कारण उसमें निर्माणता थी। बाबा कहता था मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट, आज्ञाकारी सेवक हूं मैं तुम बच्चों का। अभी कहा इतनी बड़ी अथॉरिटी और कहे मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूं, कितनी बड़ी बात। बाबा हमेशा बच्चों के अंदर बहादुरी लाने के लिए बच्चों को बताते थे मैं भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट हूं। जैसा तुम्हारे साथ माया लड़ने के लिए आती है पहले तो मेरे पास आती, क्योंकि वैसे भी युद्ध के मैदान में जब खड़े रहते हैं तो क्या होता है, जो भी दुश्मन है वो सेनापति के ऊपर पहले वार करेगा ना, सोल्जर के पीछे थोड़ी भागते हैं। तो इसीलिए जो भी तूफान आते हैं, जो आगे चल रहा है उसको तूफान लगते हैं। तो बाबा कहते थे देखो ये माया के तूफान पहले मेरे को टकराते हैं, मेरे को टकराने के बाद उसका जोर कमती हो जाता है और फिर तुम्हारे पास आते। क्योंकि तूफान अगर किसी पहाड़ी को टकराएगा तो क्या होता है, उसका जोर कम हो जाता है ना। तो बाबा हमेशा अपना मिसाल दे करके बच्चों को हल्का कर देते थे और अपनी निर्माणता बाबा की जो है वो भी बाबा के हर कर्म में दिखाई पड़ती थी। तो उसी प्रकार हम लोगों को भी सर्व गुणों में संपन्न बनना है तो पहले निमित्त भाव, क्योंकि बाबा ने जो गृहस्थी है उसको गृहस्थी नहीं परंतु ट्रस्टी बना दिया है। हम निमित्त है और हम ये कार्य कर रहे, बाबा ने हमें सेवा दिया है। बाबा ने यहां तक भी कहा कि जैसे ये बच्चियां सेवा स्थान संभालती है वैसे ही तुम बच्चे घर गृहस्थ में रह करके उसको अपनी गृहस्थी नहीं समझो परंतु सेवा स्थान समझो। तो जब सेवा स्थान समझेगे तो अपने को सेवाधारी समझेगे, अपने को निमित्त समझेगे, अपने को न्यारे समझेगे और सहज नष्टो मोहा बनते जाएंगे। तो गुणों की धारणा करने के लिए बाबा ने हमें अनेकानेक युक्तियां बताई। हम लोगों ने देखा साकार बाबा ने अपना सर्वस्व अर्पण किया, बाबा के साथ लौकिक संबंधी भी सब साथ में थे परंतु बाबा सबसे न्यारा और सबसे प्यारा। बाबा के अंदर कोई भेदभाव नहीं था, किसी को मालूम भी नहीं था कौन किसका क्या लगता है। वो ही देख के जो दूसरे रहने वाले उनके अंदर भी वो नष्टो मोहा की स्थिति जो है वो सहज ही उन्होंने प्राप्त किया। तो उसी प्रकार ऐसा नहीं कि हम प्रवृत्ति में रहते हैं इसीलिए नष्टो मोहा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सर्व गुणों में संपन्न बनने के लिए नष्टो मोहा ये तो बहुत बड़ा गुण है। तो उसको प्राप्त करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को अशरीरी बनने का अभ्यास कराया। जितना जितना हम अशरीरी बनते हैं आत्मिक स्थिति में रहते हैं और आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि हमारी पक्की होती जाती है, उतना उतना हम इस दुनिया से न्यारे होते जाते हैं। तो साकार बाबा के अंदर ये सारे गुण थे, वो ऐसे ही नहीं आए, परंतु बाबा ने अपने ऊपर फुल अटेंशन दिया। आप लोगों को मालूम होगा, जब शुरू शुरू में शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा ने बैठ के कापियां की कापियां लिख डाली, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, घर के जितने मेंबर थे उनके नाम से कापियां की कापियां भर डाली। बाबा कहता था मैं बनारस में जाके बैठ गया, वहां जाके बैठा, मैं दीवारों पर लिखना चालू कर दिया। बाबा ने इतना अभ्यास किया आत्माभिमानी बनने का, जिसके कारण कभी भी बाबा को देह का भान नहीं आया। बाबा ने सर्वस्व अर्पण किया, परंतु बाबा ने कभी वर्णन नहीं किया कि मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा। बाबा ने ईश्वर अर्पण कर दिया, तन मन और धन सब कुछ अर्पण कर दी। तन भी ऐसा अर्पण किया, शिव बाबा ने तो उसमें प्रवेश किया ही, शिव बाबा तो उसके द्वारा कार्य कराता ही था, परंतु बाबा ने अपने तन को दधीची ऋषि मिसल हड्डियां घिसी, यज्ञ में समर्पण किया। बाबा अपने आराम का समय भी सेवा में लगाता था, कितना कितना समय तो बाबा रात को सोते नहीं थे। तो बाबा से पूछते थे, बाबा आपको नींद नहीं आती है क्या? बाबा कहता था, नहीं बच्चे मेरे को नींद नहीं आती। क्यों नहीं नींद आती है? बाबा कहता है ये बांधेलियां पुकारती है, रोती है, भगत चिल्ला रहे हैं, दुखी है, वो आवाजें मेरे को सुनाई देती, तो उनको बैठ के साकाश देता था, शक्ति देता। तो अपना समय भी बाबा ने अपने तन को भी नहीं देखा, उसको भी पूरा पूरा यज्ञ में स्वाहा किया। मन तो उसका उसके साथ ही था, परंतु कभी कभी बच्चों के साथ खेल करता था। बाबा कहते, बाबा देखते थे कि बच्चे कभी घबरा जाते हैं, क्या करें, हम बाबा को भूल जाते हैं। बाबा कहता था, मेरे बाजू में बैठा है तो भी मैं भूल जाता हूँ। मैं भोजन खाने के समय उसको बोलता हूँ, तुम आओ मेरे साथ आके खाओ, परंतु फिर क्या होता है, खाते खाते मेरे को शिव बाबा भूल जाता है। तो तुमको भूल गया तो कौन सी बड़ी बात। तो बाबा बच्चों को ऐसा हल्का कर देता था, परंतु बाबा का तो मन मनम भव की स्थिति में सदैव रहता। वो दो होते हुए भी जैसे कि एक ही थे, इसकी अनुभूति होती थी। और निराकार के जो गुण हैं, क्योंकि इसको ईश्वरीय गुण और दैवी गुण दोनों भी वर्षे में मिले, कहते हैं ना संग का रंग लगता है, आप समझ सकते हैं, जिसके साथ में आकर के सर्व गुणों का सागर बैठे, जिसके पास में आके सर्व शक्तिवान बैठे, उसके संग का रंग उसको कितना लगाओ। तो शिव बाबा के जो जो गुण हैं, वो साकार के द्वारा प्रत्यक्ष हुए। बाबा ने उन गुणों को अपने जीवन में धारण किया। बाबा प्यार का सागर था, है प्यार का सागर अभी भी। तो ब्रह्मा बाप के द्वारा वो अनुभूति कराई कि वो कैसा प्यार का सागर, बच्चों के साथ उसका कितना प्यार, कितना स्नेह था। बाबा तो परम धाम से आता ही है, परंतु ब्रह्मा बाबा भी कोई कम नहीं था, एक एक बच्चे का कितना ध्यान रखता था, कितनी पालना करते थे बाबा बच्चों, राजकुमार राजकुमारियों से भी ज्यादा पालना करते। तो ये जो प्रेम का गुण है, जिस प्रेम में बाबा ने सबको बांध के रखा, शुरू शुरू में जिस समय पर कराची में ये सारा घमसान चला और बहुत अत्याचार किए, जो वो समझते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उस समय पर उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे, क्योंकि माताएं जब ही पवित्रता के लिए उन्होंने नहीं रहने दिया घर में, तो ये फिर पवित्रता के लिए घर छोड़ के आई, छोटे छोटे बच्चों को लेके आई, इन्होंने बहुत कोशिशें किया, जादू टोने किए, सब कुछ किया कि इनको वापस लावे, परंतु वो गई नहीं। फिर उन्होंने लास्ट एक शस्त्र छोड़ा। वो क्या शस्त्र छोड़ा, क्योंकि माताओं में मोह होता है, तो वो जो बच्चे लेके आई थी छोटे छोटे, तो वो बच्चे इन्होंने क्या किया, कोर्ट के द्वारा जाकर के जो छोटे बच्चे हैं वो हमको वापस मिलने चाहिए, 18 बरस से जो भी छोटे। तो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया कि इनको वापस करो। तो काफी बच्चे थे, बाल भवन था पूरा। बाबा देखो कैसा प्यार कितना दिया, साकार ने कितना प्यार दिया बच्चों। तो जब ये ऑर्डर आया तो उस समय पर बाबा ने कहा, अभी इनके कोर्ट से ऑर्डर आया, और उस समय तो आप समझते कितनी कड़क गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो अभी तो इनको वापस भेजना पड़ेगा। तो बाबा ने उन सब बच्चों को चार चार ड्रेस, उनका छोटा बिस्तरा, छोटी बैग, जैसा जाते ना मिलिट्री में पीछे लटका के, ऐसा उन लोगों को सबको बनाया। और उसके बाद फिर चार पांच जो वहां पर दादियां थी उनको कहा कि आप इनको जाके छोड़ के आओ। तो वहां उस समय था अल्लाह बख्श, वो वहां का बड़ा था, तो मिनिस्टर था कोई, तो बोला इसके द्वारा वो बच्चे लेने को आवे उसके बंगले पर छोड़ के आओ। तो इन लोगों ने क्या किया, ये ले गए बस में भर के बच्चों। बच्चों को जब बस में भर के ले गए तो उनको, बच्चों को तो बेचारों को मालूम ही नहीं था हमको क्यों लेके जा रहे हैं, वो तो खुशी खुशी से गए उनके साथ। और वो जो उनके पेरेंट्स थे दूसरे, वो तो गाड़ियां सजा करके आए थे, जैसा दुल्हन को लेने के लिए आए ऐसा खुशी खुशी से सब आए कि हमने जीत लिया। और बच्चों को जब मालूम पड़ा कि हमको इनके साथ जाना है तो कोई जाने को तैयार नहीं, उन्होंने तो रोना धोना चालू कर दिया। और छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे लेथड़ी पहनते ना नीचे, उन्होंने लेथड़ी पहनना चालू कर दिया, हम नहीं जाएंगे, हम बाबा को छोड़ के नहीं जाएंगे, हमको बाबा के पास ही रहना है। इतना रोवे बात मत पूछो। ब्रिजिंद्रा दादी बोला हम देख नहीं सकते थे, इतना बच्चे रो रहे और वो उनको खींच रहे। चलो आखिर इन्होंने जबरदस्ती बच्चों को ले गए तो वो दृश्य देख के अल्लाह बख्श की आंख में भी पानी आ गए। फिर क्या हुआ, दो दिन वो लोग रहे, तीसरे दिन वो सब बच्चे भाग के वापस बाबा के पास आ गए। तो ये सब बच्चे जो बाबा के पास आ गए तो ये सब फिर गए अल्लाह बख्श के पास कि आपसे, आपने जो बच्चे दिए वो बच्चे तो वापस चले गए। अल्लाह बख्श ने बोला खबरदार, अगर तुम यहाँ आए तो आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अरे इनको दादा ने क्या दिया है जिसके कारण ये इतने दादा के पीछे मोहित हुए, आप लोगों ने क्या दिया, दादा ने इनको कितना प्यार दिया, दादा ने इनको कितनी परवरिश दिया, दादा ने इनको कैसा पाला, आपने क्या किया है, इसीलिए आप उनका नाम नहीं लेना, जाओ, भगा दिया उन्हें। तो बाबा ने इतना प्यार दिया बच्चों को, छोटे बच्चों को भी बाबा ने इतना प्यार दिया, परंतु बाबा के अंदर बैलेंस की कला थी। बाबा जितना प्यारा था उतना ही न्यारा भी था। अभी अभी प्यार करेगा और अभी अभी देखो तो एकदम न्यारा हो जाएगा। जब भी जाते थे ना तभी कहेगा अच्छा बच्चे जाओ खुश रहो, आबाद रहो, ना विसरो ना याद रहो। अभी विसरो भी नहीं और याद भी नहीं रहो, दोनों भी बात करेंगे। और एकदम जैसा डिटैच, किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं। तो सर्व गुणों में ये भी न्यारापन, बैलेंस की जो कला है, बैलेंस की कला उसके पास थी, इसीलिए बाबा के अंदर वो सर्व गुण आते गए। तो बैलेंस की कला भी बहुत आवश्यक है। तो इस संगम युग के ऊपर, वहां तो सर्व गुण संपन्न तो सिर्फ दैवी गुण होते हैं, परंतु यहाँ संगम युग पर ईश्वरीय गुण और दैवी गुण ये दोनों गुण हमें वर्षे में मिलते, ईश्वर के अंदर जो विशेषताएं वो भी हमारे अंदर भरी जाती है और देवताओं की जो विशेषताएं वो भी हमारे में भरी जाती है। तो बाबा ने हर एक बात हम बच्चों को प्रैक्टिकल में करके बताया कि कैसा करना है। तो जब हम साकार बाबा के जीवन को देखते हैं, जीवन को देखने के बाद मालूम पड़ता है कि जितना जितना अपनी संपन्नता के, क्योंकि जितने जितने संपन्न बनते जाते हैं, गुणों से भरपूर बनते जाते हैं, उतना उतना क्या होता है, संपन्नता आती जाती, संपूर्णता आती जाती है। जैसा चंद्रमा 16 कला संपूर्ण हो जाता है ना, तो उसी प्रकार आत्मा संपूर्णता की स्टेज की तरफ जाती है। तो हमने देखा साकार बाबा की जो संपूर्ण स्टेज है वो क्या थी। बाबा पहले तो हम बाबा के पास जब भी आते थे, बाबा से बैठते थे, बाबा को समाचार सुनाते थे सेवाओं का। बाबा बड़ा रुचि से सुनता था और पूछता भी था। कोई हम सेवा करते थे ना, बाबा को लिख के भेजते थे समाचार, और फिर बाबा हम बच्चों को करेक्शन भी देके भेजता था, ऐसा नहीं ऐसा समझाना, सब करेक्शन भी देते थे बाबा। परंतु धीरे धीरे देखा, बाबा ने पहले बाहर का ये संन्यास किया, स्थूल संन्यास, तन मन धन ये किया। धीरे धीरे देखा बाबा इन बातों से भी उपराम होता गया, सब बातों से एकदम उपराम। क्योंकि आत्मा जितना जितना अपनी संपूर्ण स्टेज की तरफ जाती है, उतना उतना उसको आवाज में आना और आवाज सुनना अच्छा नहीं लगता, उसको आवाज की दुनिया अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि संपूर्ण स्टेज ये आवाज की दुनिया की परे की स्टेज, तो इसीलिए प्रैक्टिकल में दिखाई पड़ता था कि बाबा को आवाज नहीं अच्छा लगता, बाबा आवाज से परे रहता था। पहले जाके बाबा के पास बैठते थे, समाचार सुनाते थे, परंतु फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन होता गया, जब जाते थे तो बाबा तपस्या में बैठा रहता था। नहीं तो बाबा इतना फुर्त था, अभी देखेंगे तो इधर खड़ा है, अभी देखो तो भंडारे में, अभी देखो तो इधर, फिर बाबा उसके बाद तपस्या में ही ज्यादा बैठता। और ऐसा बाबा बैठेगा एकदम सन्नाटा पूरा। आप जाओ बाबा के सामने जाके बैठो, कुछ बात करने के लिए जाओ, टाइम लिया बात करने के लिए गए, जाके बैठेंगे तो हमारे संकल्प भी स्टॉप हो जाएंगे, सामने वाले के संकल्प भी नहीं चलेंगे, बैठे रहेंगे, दृष्टि लेते रहेंगे बाबा से, गुम हो जाएंगे। फिर थोड़े काफी समय के बाद बाबा पूछेगा कुछ कहना है, कुछ नहीं, सिर हिलाएंगे, कुछ नहीं कहना है, कहने के लिए आए हैं। परंतु बाबा की वो जो संपूर्णता की स्टेज थी उसके आगे कुछ भी नहीं, फिनिश, और उठ के चले जाते थे। फिर बाहर आने के बाद समझता था, अरे ये क्या है, हम तो बाबा से बात करने को गए थे, फिर बाबा से बात तो किया ही नहीं। तो बाबा ने ये स्टेज कोई जादू मंत्र से नहीं पैदा किया, या शिव बाबा ने उसमें प्रवेश किया इसीलिए उसको ये स्टेज नहीं आई, उसने खुद के ऊपर मेहनत किया। बाबा ने रात रात जाग के बाबा ने तपस्या किया, जिस तपस्या का फल स्वरूप क्या हो गया, वो संपूर्ण और संपन्न बनता गया। जितना जितना संपन्न बनता गया उतना उतना संपूर्णता की स्टेज की तरफ जाता गया। हम अक्टूबर में बाबा से मिलने के लिए आए थे पार्टी लेकर के, हमको बहुत फर्क दिखाई पड़ा बाबा में। मैं बोला बाबा तो बाबा ही है, परंतु बाबा बहुत एकदम लाइट लाइट ऐसा दिखाई पड़ता था। संदल पर बैठता था बाबा, दृष्टि देता था ना, तो ऐसा लगता था जैसा ब्रह्मा दृष्टि नहीं दे रहा है, श्री कृष्ण की दृष्टि है। तो हमने जाके वहां बॉम्बे में क्लास में सुनाया था कि बाबा के अभी वो नेत्र नहीं है, ये श्री कृष्ण के नेत्र है। उसके बाद तो बाबा जनवरी में अव्यक्त हो गए। तो जैसी संपूर्ण स्टेज बाबा के नेत्रों से दिखाई पड़ती, अनुभव होता था कि बाबा संपूर्णता की तरफ जा रहा। संपूर्ण बन रहा, पर उसके पीछे बाबा ने जो खुद के ऊपर मेहनत किया वो मेहनत बाबा को काम में आई। तो अभी हमें भी ये ध्यान में रखना है कि हमारे को ये संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य ब्राह्मणों का क्या है, बाप समान बनने का लक्ष्य, तो हमें संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने के लिए हमें मनसा वाचा कर्मणा सबके ऊपर फुल अटेंशन देने की आवश्यकता है। जितना जितना हम अपने जीवन को ईश्वर के समर्पण करके चलते हैं, बाबा ने हम बच्चों को मर्यादाएं बताई है। समर्पण का मतलब क्या है? समर्पण, सब कुछ अर्पण कर दिया। तो बाबा ने जब भी हमने मन को बाबा के अर्पण किया तो बाबा ने हमारे मन के लिए मर्यादा बताई। मन की मर्यादा क्या है? मन की मर्यादा है सदैव पॉजिटिव सोचो। मन की मर्यादा है मनमना भव की स्थिति में रहो। मन की जो मर्यादा है वो शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। कभी भी अपने मन को मैला नहीं करो। अगर हमारा मन मैला होता है, चित्त मैला होता है, तो मैला मन ईश्वर से नहीं लग सकता। मैला कैसा होता है? जब हम औरों की कमियों को देखते हैं तो हमारा मन मैला हो जाता है। आप देखो किसी की भी कमी को देखेंगे तो कमी देखने के बाद क्या होता है, उस आत्मा के लिए आपको प्रेम नहीं आएगा, घृणा आएगी, नफरत आएगी। परंतु आप उस आत्मा की विशेषता को देखो, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये सर्वगुण संपन्न बनना, तो बाबा कहता है मेरे हरेक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। तो तुम्हें विशेष आत्मा बनना है तो उसके लिए क्या करो, एक दो की विशेषताओं को देखो। और जब वो विशेषताएं हम देखते हैं, कहा जाता है जैसा देखेंगे वैसा बन जाएगी। तो जितनी जितनी हम विशेषताओं को देखते हैं उन विशेषताओं को धीरे धीरे हम ग्रहण करते जाते हैं। इसीलिए अपने मन को सदैव मनमना भव की स्थिति में रखो। बाबा ने आज भी देखो हम सब बच्चों की खास अटेंशन खींचवाया कि तुम जो बाबा की मुरली सुनते हो उसके ऊपर विचार करो, उसके ऊपर मंथन करो। जैसा दही में मंदिरा लगाते तो मक्खन निकलता है, तो उसी प्रकार जब तुम मंथन करेंगे तो तुम्हारे को उससे शक्ति, मक्खन से तो शक्ति मिलती है ना, उससे तुमको शक्ति मिलेगी। और कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ। आप जितना ज्ञान का सिमरण करेंगे ना आपको सुख की अनुभूति होगी। अतिंद्रिय सुख कैसा मिलेगा? सिमरण के बगैर नहीं मिलेगा। सिर्फ शिव बाबा करके नहीं मिलेगा, सारा दिन कितना करेगा शिव बाबा। उसके साथ हमारे हमेशा ज्ञान का सिमरण भी चलता रहे, बाबा की भी याद रहे, क्योंकि ज्ञान का सिमरण होगा तो ज्ञानदाता भी जरूर याद होगा। तो इसीलिए हमारे को सदैव अपने मन को बिजी रखना है। कहा जाता है खाली मन शैतान का घर, तो हमको कभी भी अपने मन को फ्री नहीं रखना है, परंतु सदैव मन को बिजी रखना, मन को लगा के रखो बाबा से। बाबा कहते हैं जिनके मिसल गया ऊपर आया नीचे, काम पूरा हुआ फिर ऊपर चला गया, बैठो नहीं एक जगह पर। तो ये ड्रिल करते रहो हमेशा, बाबा ने उसके लिए हमें कितनी युक्तियां बताई। तो अगर हम ये ध्यान में रखते हैं, अपने मन को हम जितना जितना साफ करते जाते हैं उतना उतना क्या है, हमारा मन ईश्वर के साथ लगता जाता है, हम आत्माएं पावन बनती जाती है, शंकर रंग लगता है। बाबा क्यों कहते हैं निरंतर मेरे को याद करो? निरंतर बाबा को याद करने से बाबा के शंकर रंग हमारे ऊपर चढ़ता जाता है। और बाबा निरंतर इसीलिए कहता है क्योंकि कोई भी समय मेरी अंतिम घड़ी हो सकती। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा आप इतनी छोटी आयु में मम्मा कैसी बन गई, आपसे तो बड़े बड़े और भी है। मम्मा ने कहा मैं हमेशा यही समझती हूँ कि यही मेरा अंतिम श्वास, हमेशा मैं ऐसा ही समझती। अभी जिसको यही याद रहेगा कि यही मेरा अंतिम श्वास है, उसका अपने ऊपर कितना अटेंशन रहेगा बताओ। तो कभी भी हमारा श्वास अंतिम श्वास हो सकता है, उस समय बाबा याद रहे तो उसकी हमारे को क्या करनी है, अब इसे प्रैक्टिस चाहिए। तो हम देखते थे बाबा जैसा कि बाबा मैं हो गया था, ब्रह्मा बाबा तो बाबा मैं हो गया। उसके बाद बाबा ने हमें वाणी की मर्यादा बताई कि वाणी को भी मर्यादित चलाओ। कैसी वाणी बोलो? हमेशा बोलो तो क्या बोलो? ज्ञान बोलो। हमेशा बोलो तो आत्मोन्नति की बातें बोलो। हमेशा बोलो तो मीठा बोलो। हमेशा बोलो तो क्या करो? सत्य बोलो। हमारी वाणी हमेशा सत्य होनी चाहिए। आपको खुद को भी मालूम है क्योंकि हम सच्चे बाप के बच्चे हैं। तो जब सच्चे बाप के बच्चे हैं तो बाबा ने हमें ज्ञान युक्त वाणी बोलना सिखाया है, युक्ति युक्त वाणी बोलना सिखाया है, सत्य वचन बोलना सिखाया है। आज क्यों दुनिया में बोलते हैं सत्य वचन महाराज? सत्य वचन महाराज क्यों कहते हैं? महाराज के वचनों में सत्यता कहाँ से आई? उसने तपस्या किया इसीलिए आई ना। तो हम ऐसा कोई भी बोल नहीं बोले जो असत्य होवे, सदैव सत्य बोलो। तो तभी बाबा कहता है कि बच्चे कम बोलो, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बोल से क्या होता है, तुम्हारी डबल शक्ति जाती है। एक तो आत्मा का बल भी जाता है, दूसरा शरीर का भी बल जाता है। तो तुम्हारी शक्ति क्या होती जाएगी? सेव होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी। तो जिसके कारण क्या करेंगे, तुम मनोविकारों पर सहज विजय प्राप्त कर सकेगी। तो इसीलिए हमारे को संपूर्णता की तरफ जाना है तो अपनी वाणी की तरफ भी हमें बहुत ध्यान देना है। रोज पाठ पक्का करते ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, और जो बोलो सोच के बोलो। बोलने के बाद नहीं पछताओ, पर पहले सोचो पीछे बोलो। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को सत सत विवेक बुद्धि हमारी जागृत की हुई। तो हम देखते थे बाबा जो भी बोलते थे कितना अच्छा, ऐसा लगता था जैसे मोती गिर रहे। बच्चों को वरदान देते थे। तो बाबा कहते हैं तुम वरदान ही बच्चे है ना, तुम्हारा काम भी है औरों को वरदान देना। वो कभी कर सकेंगे जब अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रहेगा, तभी कर सकेंगे। उसके बाद कर्मों के लिए भी बाबा ने हम बच्चों को मर्यादा बताई कि तुम्हें मर्यादा युक्त कर्म करने, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदैव क्या करो, बाबा की याद में कर्म करो, कर्म योगी बन करके चलो। जो कर्म योगी बन के कर्म करते हैं उसकी यादगार बनती है। आज देवी देवताएं जो है, सब देवताओं की पूजा नहीं होती है, परंतु खास जो देवी देवताएं हैं उनके हर कर्म की पूजा होती है। अभी देवताओं को भोग लग रहा है, अभी देवताएं विश्राम कर रहे हैं, अभी देवताओं को स्नान करा रहे, हर कर्म की पूजा होती। क्यों पूजा हुई हर कर्म की? क्योंकि इस जन्म में उन्होंने ईश्वरीय याद में रह के कर्म किए। तो हमें सारा दिन अपने ऊपर अटेंशन देना है कि हम बाबा की याद में रह के कर्म करते हैं। आज भी बाबा ने कहा ना, याद तो बड़ी तिरकनी है, तुम याद करते हो याद खिसक जाती है, याद करते हो याद खिसक जाती है। तो उसके लिए तुम्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। परंतु हम लोग क्या करते हैं, पहले कर्म करते हैं, पहले एक बारी याद किया, फिर कर्म चालू किया, फिर बाबा भूल जाता है। बाबा कहता है ऐसा नहीं करो, तुम क्या करो, याद को फर्स्ट नंबर दो और फिर कर्म चालू करो। क्यों? हमको बाबा को याद जरूर करना है। अभी भोजन खाते हैं, बाबा की याद में भोजन खाना है, भोजन में बाबा को याद नहीं करना है, बाबा की याद में भोजन खाना है। तो पहले बाबा याद रहेगा तुमको, नहीं तो क्या करते हो, एक गिट्टी खाएंगे बाबा याद रहता है, दूसरी गिट्टी खाएंगे बाबा भूल जाता है, खाने में बिजी हो जाते हो फिर। ऐसा नहीं करो। तो इसीलिए अपने ऊपर थोड़ी मेहनत जब भी करते हम ध्यान देते अपने ऊपर, तो क्या होता है, हमारे जो कर्म है वो श्रेष्ठ बनते जाते हैं। युक्ति युक्त कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा ही तो श्रेष्ठाचारी दुनिया को लाते हैं, हम कैसे लाएंगे। तो इसीलिए ये भी कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की भी बहुत बड़ी कला बाबा ने हम बच्चों को सिखाई कि अपने कर्मों को कैसा श्रेष्ठ बनाओ, और फिर संबंध संपर्क जो है आपस में, संबंध संपर्क भी तुम्हारा आपस में कैसा होना चाहिए, आपस में एक दो के लिए भाई भाई की वृत्ति रहे। देवताएं देखो आपस में कैसा मर्यादा से चलते हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, वहां थोड़े हमको कोई मर्यादा सिखाएगा, यहां से ही हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के जाते हैं। तो ईश्वरीय मर्यादाएं जो बाबा ने हम बच्चों को बताई हुई है, उन मर्यादाओं को हमारे को हमेशा कुछ भी हो जावे तो कभी भी हमें मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना। बाबा कहते थे बच्चे धरत पड़िए धर्म न छोड़ी, इसका अर्थ ये होता है मरना भी पड़े ना तो अपनी धारणाओं को कभी नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं तुम धारणाओं को जैसा चाहिए वैसा चलाते रहो, लूज होते ना कोई कोई बहुत चलने वाले, ऐसा नहीं। जो धारणाएं है ईश्वरीय धारणा वो हमें कभी नहीं छोड़नी है, उसके ऊपर हमको चलना ही है। बाबा देखो कितना पक्का था अपनी मर्यादा के ऊपर। आप बाबा की लौकिक जीवन भी देखेंगे तो लौकिक जीवन में भी बाबा विष्णु कुल का था, विष्णु ही बनने वाला था तो विष्णु कुल का ही था वो। तो विष्णु कुल में तो कोई खान पान की कितनी शुद्धि होती है उनकी, इसीलिए बाबा भले कोई राजे आवे महाराजे आवे कोई भी उनके पास आवे, बाबा कभी उनको मलेच्छ का खाना नहीं खिलाते, बाबा उनको शराब कबाब कभी नहीं पिलाते। और ये राजा इतने ठाट से रहने वाले खाने पीने वाले, बाबा के पास जाते थे वहां जाकर के सौदा करते थे, क्योंकि बाबा की जो ब्रिजिंद्रा दादी बताती थी, बाबा की जो बुद्धि थी ना बड़ी तीक्ष्ण थी, तो बाबा हमेशा क्या करते थे नई नई डिजाइन बनाते थे ज्ञान इसकी हीरों की, कोई भी समझो मुकुट बनाएगी हार बनाएगी तो नई डिजाइन निकालते, तो वो इन राजाओं को बहुत अच्छी लगती थी। और इन राजाओं का ऐसा नियम होता था जब भी इन लोगों का दरबार लगेगा ना तो हर दरबार में ये नए गहने पहनेंगे, वो एक बारी पहना हुआ दूसरी बार नहीं पहनते थे, तो इसीलिए वो लोग तो खरीद करते थे। तो बाबा के पास खास आते थे, आते थे तो बाबा तो बहुत फराग दिल था, बाबा बहुत खातरी करता था उनकी पर मर्यादा से, तो वो हंसते थे बहुत उनको अच्छा भी लगता था परंतु हंसते थे, कहते थे लखीराज बाबू आपकी जो पार्टी है ना फीकी फीकी है। तो बाबा उनको कहता था तुम मेरे को कागज देते हो कागज और मैं तुमको सच्चे हीरे देता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे लिए धर्म छोड़ दूं? अरे धरत पड़ी है धर्म न छोड़िए, कुछ भी हो जावे तो धर्म तो नहीं छोड़ेंगे हम अपने। अभी देखो हम ऐसे बाप के बच्चे हैं जिसको लौकिक में भी उसको अपना धर्म इतना याद था, तो हमको अपना ये आदि सनातन देवी देवता धर्म ब्राह्मण धर्म कितना याद होना चाहिए बताओ। इसीलिए हमें कभी भी ईश्वरीय मर्यादा का कभी भी मुझे उल्लंघन नहीं करना। जब ये हम ठान लेते हैं ना तो हमारी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमें अपनी दिनचर्या को ठीक करके चलना है तभी हमारे कर्मों में परिवर्तन होता है। बाबा ने हम बच्चों को अमृत वेले से लेके रात को सोने तक सब मर्यादाएं दी हुई, उठना है तो कैसा उठना है, जल्दी उठ के बाबा के साथ कैसी रूरियान करनी है, अमृत वेले बाबा से बातें करनी है। बाबा ने खास हम बच्चों को क्या किया है अमृत वेले का समय दिया है ना, वैसे भी कोई कितना भी बड़ा आदमी हो परंतु अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालता है ना, बाबा जितना बड़ा तो दुनिया में कोई नहीं है। और बाबा देखो एक ही बारी आता है 5000 बरस में, और आके बाबा को कितना बड़ा कार्य करना है, सारी सृष्टि को परिवर्तन करना है, ब्राह्मणों को पावन बनाना है पावरफुल बनाना है, साइंटिस्ट को प्रेरणा है, क्या नहीं करना है उसको, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना है, परंतु बाबा कहता है मैं मेरे ब्राह्मण बच्चों के लिए अमृत वेला फिक्स रखा हुआ है, उस समय पर तुम बैठ करके मेरे से जो चाहिए वो वरदान ले लो। बोला ना तुम उस समय भंडारे खोल के बैठा हुआ होता है, आप शक्ति लो मेरे से, मेरे से आप आपका कोई प्रॉब्लम हो गए तो वो बताओ, वो हल कर देगा तुम्हारा, जो भी तुम्हारी आशो भी हो बताओ परंतु शुभ आश, तो जो तुम बोलेगे वो तुम्हारा पूरा करेगा, परंतु तुम्हारे को जो अमृत वेले की मर्यादा है उस मर्यादा के ऊपर तुमको चलना। तुम उस मर्यादा के ऊपर चले गए, तुम्हारा सवेरा अगर शुभ होगा तो सारा दिन शुभ जाएगा। इसीलिए हमारे को ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ आते हैं तो अमृत वेले बैठते हैं, रोज घर में कौन कौन अमृत वेले बैठता है, हाथ ऊपर करो जरा देखें, बहुत लोग बैठते हैं। अमृत वेला कितने बजे होता है, जब उठे तभी सवेरा, ऐसा तो नहीं है? हाँ, कोई कोई ऐसे करते हैं जब उठे तभी सवेरा, हाँ 6 बजे उठे तो 6 बजे सवेरा, 5 बजे उठे तो 5 बजे सवेरा। नहीं, अपने पास यहाँ देखो योग कभी होता है 4 से 4:45, तो जो फिक्स टाइम है ना उस टाइम पर आप बैठेंगे ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा मदद मिलेगी। और ये आप हमेशा ध्यान में रखो, बाबा की जो आज्ञाएं हैं, बाबा की आज्ञाओं पर चलने से ही हम आज्ञाकारी बनते हैं, और आज्ञाकारी बनने के कारण बाबा की दुआएं हमको मिलती। लौकिक में भी कौन से बच्चे हैं जिसके ऊपर माता पिता का ज्यादा प्यार होता है, आज्ञाकारी बच्चों के ऊपर होता है। तो ब्रह्मा बाप ने शिव बाप की सर्व आज्ञाओं का सिर माथे के ऊपर क्या किया, स्वीकार किया उसको, इसीलिए नंबर 1 बन गए। क्योंकि जो बाबा ने बोला, जैसा बोला वैसा करके बताया, प्रैक्टिकल में हम सभी के आगे एग्जाम्पल बन के बताया। तो हमें भी हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें बाबा की किसी भी आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना है। अगर उल्लंघन करेंगे तो बाबा से दुआओं के पात्र हम नहीं बन सकते, और जब तक बाबा की दुआएं हमको नहीं मिलेगी तो हम ऊंच पद कैसा पाएंगे। बाबा ने कहा ना, देखो पावन बनने के लिए, मुक्ति के लिए याद, और जीवन मुक्ति के लिए ये पढ़ाई जो है ये बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए हम लोगों को पढ़ाई के ऊपर भी फुल अटेंशन देना, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए भी हमारे को युक्तियां चाहिए ना, सर्व गुणों को जीवन में कैसा धारण करना है। बाबा की आप एक एक मुरली देखो, रोज नए नए तरीके से बाबा हम बच्चों को समझाते, रोज हमें नई नई स्मृति दिलाता है, घड़ी घड़ी स्मृति दिलाता है। कभी कभी कोई क्या कहते हैं, अरे क्या है बाबा, वही वही समझाता है, वही नहीं समझाता है बाबा, नए नए तरीके से हमको समझाता है, और कितने वर्षों से समझा रहा है। अगर एक बार ही समझा के चला जावे तो हम क्या करेंगे बताओ, इतने वर्षों से समझा रहा है तो भी हमारी हालत क्या है, और एक ही बार ही समझा के चला जावे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो। इसलिए बाबा कहता है मैं समझाता हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ और फिर साथ में लेके जाता हूँ। तो हमें ऐसे कर्म करने हैं जो हम बाबा के साथ में और बाबा के पास जाके रहे। साथ कौन जाएंगे, साथी वही होते हैं जो समान होते हैं। तो जब तक हम समान नहीं बने हैं बाप के, तब तक बाबा के साथ नहीं जा सकेंगे। और जो साथ नहीं जाएगा वो पास भी तो नहीं रहेगा ना, पीछे आएगा वो थोड़ी पास रहेगा। शिव बाबा जाके बैठेगा, उसके पास कौन जाके बैठेगा, जो साथ जाएगी। और फिर नई दुनिया में भी श्री कृष्ण के साथ साथ आएंगे। तो अगर फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ आना है तो उस जैसा हमको बनना पड़ेगा। वो कैसा बनना है, वो ब्रह्मा बाप को देखो, एकदम पुरुषार्थ का शॉर्टकट है फॉलो फादर। बाबा कहता है तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ ब्रह्मा बाप की कॉपी बनना है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करते चलो तो क्या हो जाएगा, तुम बाप समान सर्वगुण संपन्न भी बन जाएंगे और 16 कला संपूर्ण भी बन जाएंगे, और संपूर्ण सुख वाली दुनिया में तुम आएंगे। ऐसा नहीं 1250 बरस बीत जावे उसके बाद हम त्रेता में आवे, ऐसा तो कोई नहीं चाहता है। यहाँ कोई चाहता है हम राम राज्य में आवे, सभी क्या चाहते हैं हम श्री कृष्ण के साथ में आवे, उसके लिए तो मेहनत करते हैं ना। तो उसके साथ आना है तो फिर वैसा ही बनना पड़ेगा। तो हमें सबको अपना ध्यान रखना है कि क्या हमें सदैव बाबा याद रहता है। हम गीत तो गाते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं कोई, गाते हो गीत गाओ, मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई, परंतु सचमुच अंदर में देखो है तो नहीं कोई। बाबा ने उस दिन कहा ना, कोई चूहा कोई कौआ कभी आ तो नहीं जाता है, सिर्फ मैं और मेरा है या और भी कोई है। अगर और भी कोई आएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ हमारी बुद्धि इधर की उधर चली जाएगी। इसीलिए सिवाय बाबा के और किसी को साथ में नहीं रखना, सदैव एक बाबा के साथ रहो, बाबा के साथ चलो, बाबा के साथ खाओ। और कितनी अच्छी बाबा ने बात बताई, जब ही सो तो मेरे साथ आके सो जाओ तो तुमको नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। नींद की गोलियां खाते रहते हैं, अरे क्या करे नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है नींद? फालतू संकल्प करते तो नींद कहां से आएगी? बाबा के याद की गोली खा लो, नींद आ जाएगी आप और एकदम फ्रेश होके आप उठेंगे। फिर ज्यादा नींद करने की भी जरूरत नहीं होगी, आप एकदम अमृत वेले आप उठ करके बैठ जाएंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत सेलिब्रेशन दिया है, क्योंकि हम बाबा के सिकीलदे बच्चे हैं ना, 5000 बरस के बाद मिले हैं उसको आकर के। आप देखो, विचार करो, किसी का बच्चा 5 दिन भी गुम हो जाता है और उसको मिलता है तो बाप को कितनी खुशी होती है। हम तो बाबा को 5000 बरस के बाद मिले तो बाबा को कितनी खुशी होती होगी, और हम बच्चों को कितनी खुशी होती है? बाबा को ज्यादा होती है या बच्चों को होती है? क्या बोलते हो तुम? बाबा को ज्यादा होती है, आपको खुशी नहीं होती है? क्या बोलते हैं, खुशी होती है नहीं होती है? तो खुशी बताओ तो सही ना, ताली बजा के, कि हमको खुशी है बाबा, हमको बहुत खुशी है। अरे देखो आप देखो, हम बाबा को 5000 बरस के बाद मिले, हमको भी तो बाबा 5000 बरस के बाद मिला है, और सिर्फ बाबा नहीं मिला, इतना बड़ा परिवार मिला है तो हमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसा परिवार है किसी का? सतयुग में देखो, एक बच्चा और एक बच्ची होते, छोटा परिवार सुखी परिवार, द्वापर से लेकर थोड़ा बढ़ता है परिवार, वहां नाते रिश्ते बढ़ते हैं। और संगम युग के ऊपर कितना बड़ा बेहद का परिवार, कलयुग में तो पता नहीं काका मामा चाचा ये फलाने का फलाना फलाने का क्या क्या परिचय देते रहते हैं, और यहाँ हमारा रिश्ता कौन सा है? हम सब एक बाप के बच्चे, आपस में कौन है? भाई भाई, और फिर ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन। हाँ, इसके बगैर हमारा आपस में कोई नाता नहीं, आपस में हमारी कोई लेन देन नहीं, हमारी लेन देन एक बाबा के साथ है। सदैव ये याद रखते हुए, बाबा को याद करते हुए आगे बढ़ना है। और बाबा ने आज बच्चों को क्या काम दिया है कि तुम्हारा काम है, तुम्हारा धंधा है, औरों को बाबा की याद दिलाओ, खुद बाबा की याद में रहो, औरों को बाबा की याद दिलाओ, और नाचते रहो और गाते रहो और अपना ईश्वरीय जीवन मनाते रहो। ओम शांति।
चले साथ तेरे। हमें तो वतन की बहुत याद।